ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया, लैटिन अमेरिका और विशेषकर अफ्रीका के विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। इटली में कल G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिया जाना देश के लिए सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री ने इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और जापान के प्रधानमंत्री फुक्यूमो किशिदा के साथ बैठक की। उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री के साथ रक्षा और सुरक्षा के सहयोग पर चर्चा की और रक्षा औद्योगिक सहयोग को और बढ़ाने की आशा व्यक्त की। श्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भी जापान के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी जाती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व के कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन से पूर्ण मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा की। श्री शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाने का निर्देश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली से आज सवेरे नई दिल्ली वापस आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को सार्थक बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान वैश्विक नेताओं के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा में G7 संगठन के अंतर्गत प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को सभी निरस्त दाखिलों या माइग्रेशन के मामले में 30 सितंबर तक पूरी फीस लौटानी होगी। आयोग की यह नीति चालू शिक्षा सत्र के लिए है। यह नीति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थानों, मानद विश्वविद्यालयों और दाखिला परामर्श में शामिल संगठनों पर लागू होगी। आयोग ने यह भी कहा कि इस वर्ष 30 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच रिफंड जारी किया जाएगा और प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में अधिकतम 1000 रूपये की कटौती की जा सकेगी। 31 अक्टूबर के बाद के दाखिले के लिए अक्टूबर 2018 के प्रावधान लागू होंगे। आयोग ने यह भी कहा है कि इस नीति का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। झारखंड सरकार ने 2 लाख रूपये तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के 1,91,000 से अधिक किसानों को राहत मिलेगी। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कल बैंकों की एक समिति की बैठक में कहा कि बैंक ऋण माफी का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मुंबई के पास वडाला में कल रात 3 मंजिला इमारत की दीवार का एक हिस्सा गिरने से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। दमकल अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। अरुंधति रॉय और केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर के पूर्व प्रोफेसर डॉ शेख शौकत हुसैन पर वर्ष 2010 में नई दिल्ली में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने शिकायत दर्ज कराई थी। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज से शुरू हो रहा है। 7 दिन के इस महोत्सव की शुरुआत चार्ली हैमिल्टन जेम्स निर्देशित फिल्म बिली एंड मॉली एन ऑटर लव स्टोरी के प्रीमियर से होगी। इस वर्ष के समारोह में 59 देशों की 61 भाषाओं में बनी 314 फिल्में दिखाई जा रही हैं। सऊदी अरब में आज भारत सहित दुनियाभर से आए 20 लाख से अधिक लोग हज करेंगे। इसे 5 दिन की हज रस्म की शुरुआत भी माना जाता है। सऊदी अरब के मीना शहर में कल बड़ी संख्या में हज यात्री एकत्र हुए। इस वर्ष के हज में भारत से 2.25 लाख जायरीन शामिल हो रहे हैं। इनमें महरम के बगैर हज पर गई 5,000 महिलाएं भी शामिल हैं। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में भारत आज अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में कनाडा के साथ खेलेगा। यह मैच फ्लोरिडा में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल आयरलैंड के साथ मैच रद्द होने के बाद अमरीका ने सुपर 8 में जगह बना ली है। भारत के बाद सुपर 8 में जगह बनाने वाली अमरीका ग्रुप ए की दूसरी टीम है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।